अब आ रही है बात कि अच्छा पीछे आप चले जाते हैं। अब ये कयामत का दिन है ना, उसका सीन दिखाया गया कि यहाँ पे कितनी इनकी बेइज्जती हो रही है, और उससे पीछे चले जाएं तो उनकी वो जो जो यानी जो उनकी उन्होंने बोझ उठाने हैं वो उसकी बात है। अब आए ये दुनिया में क्या हुआ था इनके साथ, अब कयामत के दिन से पीछे चले जाएं जरा, दुनिया में क्या हुआ था जिस वक्त ये फौत होने लगे थे, तो इनकी मौत कैसी थी। अब ऐसे लोग ना जिस वक्त जिंदा होते हैं बड़े दंदनाते फिरते हैं, बड़ी इनको बातें आती हैं, लेकिन ये बातें ज्यादा देर के लिए नहीं होती क्या। ये जब जब तक ये आजादी मिली नहीं ना, अल्लाह ताला ने छुट्टी दी भी, आज जो मर्जी बोलो जैसा मर्जी कहो, अल्लाह पर बातें, रसूल पे बातें, कुरान पे बातें, इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस, इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें कहे जाते हैं, लेकिन ये आजादी हमेशा की नहीं। जिस वक्त मौत का वक्त आना है तो फिर क्या होता है। अच्छा आप देखेंगे आपके सामने अगर कोई बंदे की डेथ हो रही है, चाहे वो काफिर है, मुसलमान है, मुनाफिक है, मुशरिक है, जो मर्जी है, बजाहिर देखने में कोई आपको फर्क नहीं लगेगा, एक भी मर रहा है दूसरा भी मर रहा है, अस्पतालों के अंदर कहीं किसी वार्ड में कोई है कोई है, कहीं कोई पक्का नेक मुसलमान है, देखने में तो बजाहिर ऐसे ही है कि सबकी जान निकल रही है, लेकिन उनके पीछे क्या हो रहा है जो हम नहीं देख सकते। अनसीन वर्ल्ड की बात अब आपको बताई जा रही है। बड़ा शौक है ना हमें सोचने का कि अनसीन वर्ल्ड में क्या होता होगा, वो जो हमसे छुपा हुआ है, गैब है, तो वो अनसीन जानने का हमें बड़ा शौक होता है। तो ये अनसीन का एक मंजर है जो हमारे सामने आ रहा है, एक सीन हमें दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है। अल्लदीन तत्तवफ्फाहुमुल मलाइका, तुम वो लोग यानी जिन इन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनकी जाने जब फरिश्ते कब्ज करते हैं, जालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले होते हैं अपने नफ्सों पर। अच्छा जुल्म करने वाले अपने नफ्सों पर मतलब क्या, जानों पे जुल्म करने का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी है ना, रब्बना ज़लमना अंफुसना, जुल्म किया हमने अपने नफ्सों पर, ठीक है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, ये भी दुआ है, मैंने अपने नफ्स पे अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया है अल्लाह। तो जुल्म क्या होता है, जुल्म तीन तरह का होता है। एक जुल्म सबसे बड़ा जुल्म है ना, वो है शिर्क, जुल्मुन अज़ीम कहा गया। दूसरा वो जुल्म है जिसको हम जुल्म कहते हैं, इंसान इंसानों पे जुल्म करता है, किसी ने किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या ली जमीन, किसी को ना बेजा उसके साथ कुछ नाजायज कुछ कर दिया, ज्यादती कर दी, मतलब इस चीजों को हम जुल्म कहते हैं ना कि बड़ा जुल्म हो गया, तो ये भी जुल्म है। नंबर थ्री वो जुल्म होता है जिसका मैं आपको कह रही हूँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि जो इंसान अपने आप पे करता है अल्लाह की नाफरमानी करके, गुनाह करके, वो भी जुल्म है, ठीक है। तो ये तीन तरह के जुल्म आप याद रखिए। तो जो अपनी जानों पे जुल्म करने वाले थे ना, तीनों तरह के ये लोग जालिम ही हैं। अब जब इनकी वफात का वक्त आता है तो क्या होता है, जालिमीन था नून गिर गया क्योंकि इजाफत की वजह से ना, तो जालिमी अनफुसिहिम, अपनी जानों के ऊपर खुद जुल्म करने वाले थे इस हाल में। अब वो यानी वो उन्होंने तौबा नहीं की थी, वो दे आर इन दिस जब वो फरिश्ते आ गए आप, ठीक है। अब क्या होता है, फअल्कावुस्सलाम, तो ये क्या करते हैं, उनके सामने बड़े मेमने से बन जाते, उनके सामने बड़ी सपुर्दगी पेश करते हैं। अब फरिश्ते जो आ गए उनको देख लिया तो अब सारी अकड़ खत्म हो गई, अब तो जिसको हम कहते हैं ना मिनते तरले करने पे आ जाते हैं, बड़े फरमा बरदार से बन गए, सुलह सिपाही उनके आगे आगे बिछ रहे हैं, हम उन सरेंडर कर दिया, अभी तक तो तुम बड़े बने हुए थे, बड़े तुम अकड़े पड़े थे, उनमें तो लगता था मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, जैसे तुम ऑल इन ऑल हो। अब क्या हुआ, एकदम नीचे नीवे नीवे हो गए, अब सोच लेना, जो हर वो इंसान जो जुल्म कर रहा है, वो किसी किस्म का भी जुल्म, इन तीन कैटेगरीज में किसी का भी हो सकता है, चाहे वो गुनाहों के अंदर पड़ा हुआ है, उसने कहा जब तौबा कर लेंगे जब मरने लगेंगे कर लेंगे, चाहे वो किसी पे जुल्म करता है, कोई यतीमों बेवाओं गरीबों मिस्कीनों पे, जाहिर अपने से जिन जिनका स्टेटस माशरे में नीचा होता है उसके ऊपर ही, जो जिसके ऊपर डंडा उसका चलता है उसके ऊपर ही चलाता है ना, चाहे वो घर में कोई शख्स है चाहे वो बाहर है, जहां पे अपनी चल गई वहां पे वो जुल्म करने पे लगा, उसको लगता है मुझे कुछ नहीं, कुछ पूछना ये क्या कुछ कर सकता है, मेरा बिगाड़ सकता है, जाए जाके कोई भी कर ले, किसी को बुला ले, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, तो उसको लगता है मैं बड़ी चीज हूं ना। मगर फरिश्तों के आते ही कैसे फौरन बिछ जाता है, कैसे भोले बन जाते हैं, कुन्ना नामुल मिनसू, हम तो हमें कोई सू इन है ना, सू इन मैंने अभी आपको बताया, नकेरा जब भी आएगा ना तो इसके अंदर बड़ा वास्ट वो हो जाता है मीनिंग, कोई बुराई हम तो करते ही नहीं थे। हाय इंसान कितना फौरन मतलब झूठ पे आ जाता है, हम तो कोई भी नहीं करते थे बुराई, हमने तो नहीं कुछ किया, जैसे ना मुजरिम को पुलिस पकड़ ले, छापा पड़ जाए कहीं, जुए कुछ और खेल रहे थे छापा पड़ गया, वो कहते नहीं 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 जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो नहीं, मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही, इस तरह इनका हाल होता है। फरिश्ते आ गए, इंसान को क्या पता उसकी मौत अराउंड द कॉर्नर किधर लिखी भी है, अब कितने लोगों को हम सुनते हैं जी अचानक हार्ट अटैक हो गया, ये अचानक एक्सीडेंट हो गया, जी वो तो अच्छा भला बैठा हुआ था तो पता नहीं क्या हो गया, जी उसको तो क्या हुआ वो तो बस अस्पताल लेके गए तो वो खत्म ही हो गया था, इतनी अचानक, अगर वो इंसान जालिम होता है तो फिर वो उनको मिनते कर रहा होता है, अच्छा अब हमें नहीं नजर आ रहा, हमें लग रहा है कि ये बस इसकी जान निकल रही है जा रहा है, लेकिन उसका उसके क्या डायलॉग्स हो रहे हैं, वो क्या उस वक्त उनको कह रहा है, वो सब उसकी उसके ऊपर गुजर रही है ये सब, ठीक है अभी उसकी जान निकली नहीं है, अभी वो अब फरिश्ते आ गए उसके पास बैठे हैं, अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं जी मैं नहीं कुछ बुराई कर रहा था, भला क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीमुम बीमा कुंतुम तामलून, अब ये फरिश्तों की भी बात हो सकती है, ये अल्लाह ताला की भी बात हो सकती है, कि फरिश्ते भी कह सकते क्यों नहीं, अल्लाह ताला को तो सारा पता है जो तुम करते थे, तुम कह रहे हो ना मैं कुछ भी नहीं करता था जी, अब इंसान की बातों के ऊपर थोड़ी यकीन हो जाएगा वहां पे, वदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, वो उसकी जान निकालते हैं और कहते हैं चल अब जहन्नम के दरवाजों के अंदर दाखिल हो, इसमें हमेशा तो पड़ा रहेगा, फला बेसा मसवल मुतकब्बिरीन, तो कितना बुरा ठिकाना है तकबर करने वाले को, फिर तकबर की बात आ गई, वो जो मानते नहीं थे ना वो तो अपने आप को बड़ी चीज समझते थे, इसीलिए तो जुल्म करता ना इंसान, अल्लाह की हदों को नहीं कुछ समझता, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह की बात को ठुकरा देता है, हक को ठुकरा देता है, हक उसके पास आया उसको ठुकरा दिया, अल्लाह की बात को कुछ नहीं समझा, अल्लाह के अहकामात को कुछ नहीं समझा, तकबर था ना, कभी अपनी अकल को कुछ ज्यादा समझते हैं, अपनी अकल का भी बड़ा तकब्बुर होता है इंसान के अंदर, मैं बड़ा समझदार हूँ मैं बड़ा इल्म वाला हूँ मेरे पास सारा नॉलेज है, हमें क्या पता नहीं है, हम क्या नहीं जानते, कितने लोगों को आपने ऐसे कहते सुना, हम क्या पागल है हमें नहीं क्या अकल है, तकब्बुर अपनी अकल का, तो चलो अब जहन्नुम के अंदर दाखिल हो, तो अल्लाह अकबर, इसी की बात हमें हदीस से भी पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त एक काफिर या फासिक या फाजिर इसके लिए फरिश्ते आते हैं इसकी जान निकालने के लिए, तो वो इतने इंतहाई खौफनाक होते हैं वो फरिश्ते, अब तो पहले ही देख के उनको इंसान परेशान हो जाए, ऐसे ही समझे कि अच्छा आगे आएगा ना, जो ईमान वाले हैं जो सालेहीन हैं जो नेक अल्लाह के बंदे हैं उनके लिए फिर कैसे फरिश्ते आते हैं और इनके लिए कैसे आ रहे हैं, अब देखिए जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में एक बंदा पड़ा हुआ है, मौत तो दोनों के ऊपर आनी है, ऑपरेशन दोनों का होना है, लेकिन एक बंदा उस वो देखता सामने लोग हथौड़े और कैंचियां और आरे लेकर आके खड़े हो गए और की लेकर आके खड़े हो गए, उसकी तो जान ही खत्म हो जाएगी, और दूसरा है उसके ऊपर भी प्रोसेस होना है, लेकिन कोई लोग फूल लेके खड़े हुए हैं, कोई लोग प्यार मोहब्बत से सर पे हाथ फेर रहे हैं, कोई लोग कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं उसके लिए उसको खुश करने वाली, दोनों के उसमें फर्क होगा ना, अब ये क्या होता है कि इतने इंतहाई खौफनाक चेहरे वाले एक तो फरिश्ते, फिर उसको कहते हैं या अय्या तो नफ्सुल खबीसा, ए खबीस रूह, ए मगदूब रूह। जब ये कहेंगे तो उसके अंदर रह क्या जाएगा बताएं? इसको गुस्से से ये कहा जाएगा, एक तो इतने खौफनाक ऊपर से बात करने का तरीका, और अपने साथ कुछ चीजें भी लेकर आए होते हैं, सामान भी कुछ लेकर आए होते हैं। फिर वो कहते हैं, जब ये कह देते हैं उसके कान के पास आके, कहते हैं कि खबीस रूह, ऐसी रूह, चल अल्लाह के गजब की तरफ, उसके गुस्से की तरफ, जहन्नुम के अजाबों की तरफ। अब वो डर जाती है रूह, इतनी डर जाती है कि वो जिस्म से निकलना ही नहीं चाहती। कौन निकलेगा, खुद सोचे, ऐसा कोई पुलिस का छापा पड़ जाए, लोग सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे, भाग जाए। अब ये तो फरिश्ते हैं, इनसे किधर भागेगी रूह। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह माफ करे, वो रूह जो है ना फिर छुपती है अंदर, वो इधर भागती है, इधर जिस्म में भागती है। वहां आपको लग रहा है ये बंदा तो आराम से पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। फरिश्ते उसको खींच के निकालते हैं, वन्नाजियाति वर्का वन्नाशितौति नशता, देखे हम 30वें पारे में, डूब के खींच लेने वाले। और फिर इस तरह उसको खींचते हैं कि हदीस में आता है जिस तरह कांटेदार लोहे की सलाख होती है ना, उसको गीली ऊन से जबरदस्ती खींच के निकाला जाए, तो वो गीली ऊन एक तो लोहे की सलाख है, कांटेदार है, और वो ऊन गीली है, तो बस तो जब निकलेगी ये लोहे की सलाख तो कैसे निकलेगी, उसके ऊपर ऊन लगी होगी, ऊन तार तार हो जाएगी, तार तार हो जाएगी ना। ये हाल होता है उसका जिन जालिमों को, जब उनकी मौत आती है उनके फरिश्ते उनको निकालते। अब देखिए सूरह अनाम में आयत 93 में है ना, वलो तराइज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल यौमा तुजज़ौन अज़ाबल हुन बिमा कुंतुम तक़ूलून अल्लाहि गैरल हक़ व कुंतुम अन आयाती तस्तकबिरून। काश तुम उन जालिमों को इस हालत में देख लो जब वो उनकी मौत की जानकनी की हालत में वो होते, तो फरिश्ते हाथ बड़ा बड़ा के कह रहे थे निकालो अपनी जाने, आज तुम्हें उन बातों की वजह से रुसवा कुन अजाब दिया जाएगा जो तुम नाहक अल्लाह ताला के बारे में किया करते थे, तुम अल्लाह की आयात से तकबर करते थे उस वक्त। फिर इस हालत में सोचे उसकी रूह निकाली जा रही है, अब हमें क्या पता, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा इसको। अब इस तरह खींच के, और बाज जगह आता है मार मार के उनके चेहरों पे और उनकी पीठों पे मारते हैं, और इस हालत में उनकी रूह निकालते हैं। और जब उनकी रूह निकलती है उस वक्त उससे इतनी गलीज बदबू आती है, इस तरह से गले सड़े मुर्दार से आती है ना, तो इंतहाई मकरू। तो फरिश्ते जब उसको आसमान की तरफ ले जाने लगते हैं, तो आसमान के फरिश्ते भी इतनी बदबू महसूस करते हैं, कहते हैं हाय कोई खबीस रूह है आसमानों की तरफ ले जाई जाए। तो जब वो पहले आसमान पे जाके फरिश्ते, आपको पता है आसमान पे, उन आसमानों पे तो बहुत सिक्योरिटी सिस्टम है ना, ये सारी अनसीन की बातें हो रही हैं। अब आप कहेंगे मुझे तो कोई सिक्योरिटी नहीं नजर आ रही यहां से, हमें तो कुछ भी नहीं नजर आता, हमें तो जिन्नात भी नहीं नजर आते, हमें फरिश्ते भी नहीं नजर आते, यहाँ पे फरिश्ते हैं हर जगह हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमें तो वो नहीं नजर आते, आसमानों की बातें तो दूर की हैं। तो वो वहां पे नॉक करते हैं, पूछा जाता है कौन है, जवाब में वो फरिश्ते जो लेकर आए हैं ना इसको, ये कहते हैं ये इसका नाम है फलां बिन फलां। आसमान के फरिश्ते पूछते कि, जवाब देते हैं आसमान के फरिश्ते कि इस खबीस जिस्म की खबीस रूह के लिए कोई खुश आमदेद नहीं है यहाँ पे, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इसे जलील करके वापस जमीन पे फेंक दो, तो उसको वो पटख देते हैं, इसे जीन के अंदर उसको रख दिया जाता है। तो अब ये देखें यहां पे किस वक्त की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है जिस वक्त उसकी रूह कब्ज की गई, तो उसको कहा जा रहा है फदकुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा, अभी तो कयामत आई नहीं, तो फिर वो क्यों कहा जा रहा है कि तुम जहन्नुम के अंदर दाखिल हो जाओ उसके दरवाजों में, इसलिए कि ये जहन्नुम का जो टेस्ट है ना वो वहीं से आना शुरू हो जाएगा। याद रखें जो जहन्नमी है ना वो, यानी कब्र से ही वो जहन्नुम की सारी चीजें शुरू होने शुरू हो जाएंगी, जैसे हदीस में आता है ना वाजे तौर पे कि इंसान के लिए जो जो जहन्नमी है उसके लिए जहन्नम की तरफ की खिड़की खोल दी जाती है, उसके उसको दरवाजा खोल दिया जाता है या खिड़की खोल दी जाती है, जिससे आग का अजाब उस तो उसको महसूस होगा, उसको दिखाया जाएगा ये यहां पे तूने जाना है। समझ आई बात? दरवाजा खोल दिया जाता है या खिड़की खोल दी जाती है, वो देख रहा होता है दिन रात वहां से, देख रहा होता है कि ये है। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है इसको आग का लिबास पहना दो, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, और फरिश्ते मुसल्लत हो जाते हैं उसको, लोगों के गुर्जों से मारते हैं, उसका अजाब तो शुरू हो गया ना। अभी भी लोग कहते हैं अजाबे जहन्नुम, अजाबे कब्र कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो ये सारी हदीसें ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद ये कुरान के अंदर तो अभी ये मौत का ही जिक्र आ रहा है, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है उसकी, जो आगे की बात है अभी कयामत की बात थोड़ी शुरू हुई है। लेकिन यहीं से देखें, जन्नत वालों के लिए जन्नत की तरह की कब्र, जन्नत की तरह का हशर, जन्नत की तरह की सब चीजें होंगी। देखिए ऐसे ही है ना, जैसे आप देखें जो वीआईपीज होते हैं, अब वो वीआईपी अभी वहां पे पहुंचा नहीं है अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन एयरपोर्ट पे भी वीआईपी प्रोटोकॉल, और फिर उसके बाद आप देखें जो लाउंज है वो भी वीआईपी वाला, फिर उसके बाद आगे भी उनके जहाज में भी वीआईपी वाली जगह उनको मिलती है, फर्स्ट क्लास में उनको बिठाया जाता है, फिर जब उतरते भी हैं तो उनके लिए रेड कार्पेट। अभी तो पहुंचे नहीं है ना वो वहां, लेकिन उनका सारा शुरू से ही वीआईपीज वाला है। तो इसी तरह इनके लिए भी थ्रू आउट जो है ना, थ्रू आउट जो है इनका शुरू से आखिर तक वो एक ही वो प्रोटोकॉल है कि शुरू से मार कुटाई, और फिर उसके बाद आसमानों से भी इनको पटखा जा रहा है, फिर उसके बाद जमीन के ऊपर भी इनको आके इनकी कब्र के अंदर अजाब शुरू हो रहा है, इनको फरिश्ता भी इनके लिए ऐसा मुकर्रर हो गया जो अजाब दे रहा है, इनके लिए खिड़की भी जहन्नुम की तरफ से खुल गई है। और एक हदीस में तो वाजे तौर पे आता है कि फिरौन आले, सॉरी हदीस में नहीं, आयत है कुरान की, कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दोजा की आग के सामने वो सुबह शाम लाए जाते हैं, कयामत कायम होते ही ए आले फिरौन तुम सख्त तर अजाब में चले जाओगे। आले फिरौन को, फिरौन और उसकी आल, सुबह शाम उनको आग के ऊपर पेश किया जाता है। तो वो अभी तो कयामत आई नहीं, तो किस आग के ऊपर पेश हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि उनको कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा है, कब्र के अंदर उनको, उनके सारा वो शुरू हो गया कब्र की, फिर भी नहीं मानते, फिर भी वो सोचते हैं कि कब्र का अजाब कोई चीज नहीं है, क्योंकि शायद हम दुनिया की तरह ही सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कब्र का अजाब। ये तो आलम बरजख की बातें हैं। और ये हदीस आप देख लें कुरान में तो कई आयतें इस तरफ इशारा करती हैं, अजाबे कब्र की तरफ, और हदीस में वाजी है, लेकिन अजाबे कब्र के मुनकर आपको मुसलमानों में नजर आएंगे। तो फल बेसा मस वल मुतकबिरीन, बड़ा बुरा ठिकाना है मुतकबिरीन का। वकील अल्लदीन तकौ, अब दूसरों की बात सुन ले, कंपैरिजन दोनों का दिखाया गया है, और कहा जाता है उन लोगों को जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जब जिन जो दुनिया में मुत्तकी थे, मोमिन थे, जो कुफर और शिर्क और गुनाहों से बचने वाले थे, तकवा वाली जिंदगी गुजारते थे, यानी बच बच के चलते थे जिंदगी में, बच बच के अपने आप को बचा बचा के, मैं किसी गुनाह में ना पड़ जाऊं, अल्लाह की नाफरमानी ना मुझसे हो जाए, ये तकवा वाली जिंदगी है ना। तो उनको जब पूछा जाता है मान जला रबकुम, देखिए उनसे भी पूछा गया ना, अभी ये आयत हमने देखी है ना, ये देखिए 24 आयत में उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, इनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानजला रब, उनका क्या जवाब है? असातीरुल अव्वलीन है और कुछ भी नहीं है। इनसे भी पूछा जा रहा है क्या उतारा है तुम्हारे रब ने, कालू खैरा, देखिए कितना फर्क है। अभी इससे पता चलता है ना, जिंदगी फर्क तो अंजाम भी फर्क, समझ आई बात? दोनों के आंसर्स बता रहे हैं कि दोनों की जिंदगियां फर्क फर्क हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी अगर गुनाहों वाली है, ऐसी असातीरुल अव्वलीन कहने वाली है, और अल्लाह ताला के कुरान को तो कुछ समझते ही नहीं है, पुरानी बातें समझते हैं, ये तो पुराना बैकवर्ड, ये तो उस जमाने का। अब देखो आजकल थोड़ी ही अप्लाई हो सकता है, ये तो पुरानी कहानियां हो गई हैं। देखे 1400 ईयर्स पहले की बात है, अब हम कैसे इसके ऊपर चले। हम इस तरह की अगर बातें करते हैं तो अंजाम भी वैसा ही है। और अगर मुत्तकी वाली बात आपकी जुबान पे है, खैरा, बहुत अच्छा, बड़े फायदे की चीज है, ये बड़ा अच्छा है। तो लिल्लदीना आसनु फी हादिहि दुनिया हसना, जो कुरान को खैर समझे, नफामंद समझे, उसको खैर कहे, तो फिर उसकी सोच, उसकी जिंदगी कैसी होगी सोचे। जाहिर वो फिर इसके ऊपर, जिसको आप चीज को अच्छा समझते हैं उसको अपनाने की कोशिश करते हैं ना, फिर आप उसको लेने की कोशिश करते हैं। वह खैर मिम्मा यजमाउन, ये तो हर चीज जो लोग जमा करते हैं उससे ज्यादा बेहतर है। इसमें तो खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। एक वो लोग थे जिनको कोई भलाई नजर नहीं आती थी, उनको ऐसे ही सब फालतू की चीज, ये फारे औरतों का काम है जिनको कुछ काम नहीं है घरों के अंदर, चलो जी कुरान पढ़ने बैठ गए, क्लासे लेने बैठ गए, आज तो जिसको देखो क्लासे ही लेने लगा हुआ। इस तरह के अगर रवैये हैं, इसे बिलिटल करना कुरान को, बिलिटल करना इसकी तालीम को, कुछ नहीं समझना, फारिग लोगों का मशगला समझना, कोई जॉब कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज कर रहा है लेकिन कुरान पढ़ा चाहिए क्या, ये फारिग लोगों के काम है। तो ये डिफरेंट सोच के लोग हैं, डिफरेंट चलने वाले लोग हैं। अब इनकी जिंदगी भी कैसे है, जिन्होंने फिर अच्छा किया, इसको अच्छा समझा, वो फिर उनके लिए हसना है, इस दुनिया में भी हसना है, ये नहीं ये आखरत में जाके हसना है, याद रखिए। ये कह रहे फी हाजी दुनिया, इस दुनिया में भी उनके लिए हसना है, इनको दुनिया में भी भलाई मिलेगी। आप सोचते हैं कुरान से सिर्फ आखरत में भलाई मिलेगी, आखरत में तो मिलनी ही है, वला दारुल आखरत खैर, आखरत का घर तो बेहतर है ही, दुनिया में भी उनके लिए भलाई है। और हम सोचते हैं कि दुनिया की भलाई है कि मैं पैसे ज्यादा कमा लूं, मैं फैशन ज्यादा कर लूं, मैं कपड़े अच्छे पहन लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये भलाइयां दुनिया की, ये इसके ऊपर ही हमारा फोकस है, इसी के ऊपर मरते जाते हैं हम। हालांकि कुरान कहता है कि जो कुरान को पकड़ के चलता है, इसको खैर समझता है, उन्होंने जो हसना की, लिल्लदीना आसनु, उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा किया, फी हाजिहि दुनिया हसन, तो इनकी जिंदगी बदल गई ना फिर, जो इसको खैर कहते हैं उनकी जिंदगी फिर वैसी नहीं रही जो पहले थी, कि जिंदगी यकसर बदल जाती है। वही लोग जो अफसाने, जो डाइजेस्ट, जो ये चीजें पढ़ने वाले थे, वो अब कुरान उनके हाथों में आ जाता है। वही जो म्यूजिक से दिल बहलाते थे, अब तिलावत कुरान उनके लिए सबसे बड़ा म्यूजिक है, सबसे बड़ा कानों की लज्जत है। वो जो पहले इस तरफ नहीं आते थे, अब उनकी जिंदगियां ही अक्सर बदल गई, तो उनके लिए फिर इस दुनिया में भलाई उनको मिलना शुरू हो गई। वो अब नेकियों में भागते हैं, वो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। तो इससे बड़ी क्या हसना है, वाला दारुल आखरत खैर, और आखरत का घर तो बड़ा अच्छा है, वाला नियामु दारुल मुत्तकीन, और कितना अच्छा घर है मुत्तकीन का। पहले बताया कितना बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का, आप बताया कितना अच्छा ठिकाना है उनका जो मुत्तकी है, उनका कितना अच्छा घर होगा वहां पे। उनका घर कौन सा होगा, क्या घर है वो, कैसा घर है वो जन्नत आदन है, जन्नतें हैं, एक जन्नत नहीं कई जन्नतें उनको मिलेंगी, हमेशगी वालियां, हमेशा की जन्नत, और जन्नत आदन जन्नत का नाम भी है, अंग्रेजी में भी कहते हैं ईडन गार्डन्स। तो यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे उनमें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, लहुम फीहा मा यशाउन, उनके लिए वहां वो होगा जो वो चाहते होंगे, जो कुछ वो चाहते होंगे। लेकिन दुनिया में भी इंसान का जो एक खूबसूरत जगह, अच्छी जगह का तसव्वुर आप अपनी आंखें बंद करके सोचे तो क्या आता है, हर एक इंसान का सेम ही है, ग्रीनरी है, चश्मे, बागात हैं, फवारे हैं, फिर इस तरह की आराम दे महफिलें हैं, कहीं बड़ा खूबसूरती है, कहीं कोई लेक है, कहीं कोई कुछ, मतलब इस तरह की चीजें आती है ना, इसलिए तो हम सैर करने के लिए भी ऐसी जगहों पे जाते हैं। हम क्यों नहीं चले जाते किसी और जगह पे, कूड़ कबाड़ जगह पे नहीं जाते ना, इन्हीं जगहों पे जाते हैं। तो ये समझ लें कि दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है आपने कभी भी देखी है, किसी मैगजीन में, किसी कैलेंडर में, और आप उसको देखकर मेस्मराइज हो गए ना, जन्नत उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो कैसी है वो हमारे तसव्वुर में आ ही नहीं सकती। मगर हाँ एक बात जरूर है, वहां जो चाहेंगे वो मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि जो दुनिया में अल्लाह की मर्जी से चलता है, वहां फिर उसकी मर्जी से उसको हर चीज मिलेगी। समझ आई? मुनाफिक काफिर यहां दुनिया में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है, तो वहां उसकी मर्जी से जिंदगी उसको नहीं मिलेगी। ये फर्क है, इस फर्क को समझें। अब आप चूज कर लें आपने कहां अपनी मर्जी करनी, ठीक है? जो यहां मेहनत कर लेगा ना, उसको आगे की जिंदगी आरामदेह मिल जाएगी। आगे की जिंदगी उसकी आरामदेह होगी। जैसे हम कहते भी है ना, बच्चों को भी कहते हैं, बेटा आज मेहनत कर ले, कल फिर तू सुख पाएगा, कल तू देखना आरामदेह जिंदगी मिलेगी। आप देखते हैं, आप ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन वैसे ही मैं जनरल उसके लिए, आप देखते हैं एक बंदा एसी में बैठा हुआ है, वो बस थोड़ा सा कुछ नुस्खे लिखता है, और वो बड़ा मालदार भी है, गाड़ी भी ऐसी है उसका। उसके बाहर उसका एक पियन बैठा हुआ है, वो बेचारा गर्मी में बैठा हुआ है, सारा दिन भी वो भी बैठा रहता है, लेकिन उसकी बेयरली उसके कुछ मिलता है। तो फिर हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं, नहीं जी देखो उसने पढ़ाई की, उसने इतनी मेहनत की, तो देखो आज आराम से है ना, और तू भी पढ़ लेता तो तू भी आज कोई अफसर बन के बैठ जाता, ऐसे कहते हैं ना हम। तो इसी तरह हमें ये बात नहीं समझ आती कि आज मेहनत कर लो तो वहां पे कल आसाइशें हैं। और आज जिसने खेल कूद में जिंदगी गुजार दी, वो जो बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, खलंडरे होते हैं, कहते हैं कुछ पढ़ ले खुदा के लिए तेरी जिंदगी बन जाए, कहते हैं या नहीं कहते बताएं मुझे। कितनी बात हमें समझ आ रही है, ये अपने लिए नहीं समझ आती कि आज खेल कूद में अगर वक्त गुजार दिया, आज बस ऐसे ही टाइम जाया करके यहां से चले गए, तो आगे फिर बड़ी मुश्किल है। फिर वो सिर्फ बाहर जो पियन बैठा हुआ गर्मी में, उसकी तरह नहीं है, फिर वो तो आग है वहां पे। और आज जिसने मेहनत कर ली, तो वो सिर्फ एसी में नहीं बैठेगा, फिर तो जन्नत वादन है उसके लिए। अल्लाह अकबर, तो वहां का तो फर्क बहुत बड़ा पड़ जाना है, बहुत बड़ा। ये तो फर्क फिर भी छोटा है कि एक बंदा बेचारा बाहर गर्मी में है, एक अंदर बैठा। देखिए वहां का फर्क तो जमीन आसमान का फर्क है, एक जहन्नुम है और एक जन्नत, फिर भी नहीं समझ आती। तो ये जो है ना मर्जियां करना, ये मर्जी किधर करना चाहते हैं, किधर मर्जी होनी चाहिए, खुद फैसला करें। दोनों जगह मर्जियां नहीं हो सकती। यहां पे भी मेरी मर्जी कि मैं जिंदगी गुजारूं, वहां पे भी मेरी मर्जी की जिंदगी गुजारूं, ऐसे नहीं हो सकता। यहां पे अल्लाह की मर्जी से चलना होगा, तो वहां पे तुम्हारी मर्जी से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यहां पे तुम अपनी मर्जियां कर लो, तो फिर आगे जाके तुम्हारी मर्जी नहीं चलनी कि आप मुझे फिर जन्नत में भेज दो। लेकिन आप ये देखें, ये जो आजकल लिबरल किस्म की खवातीन ने एक नारा लगाया ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो नारा है ना, ये बदनाम तो बहुत है, मगर अगर गौर करें ना, तो औरतों की अक्सरियत अपने जुबाने हाल से यही कह रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं क्या पहनती हूँ, क्या करती हूँ, मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। वो तो चलो मर्दों को कह रही है ना, हम तो अपनी जुबाने हाल से अल्लाह ताला को कह रहे होते हैं, मेरे कपड़े मेरी मर्जी है, मेरा चेहरा मेरी मर्जी, कहते नहीं है वाला बताएं, मुंह से नहीं बोलते, जुबानी हाल से कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी। मेरा घर है ना मेरी मर्जी चलेगी, मेरे पैसे हैं मेरी मर्जी चलेगी, क्या कभी सोचती है अल्लाह की मर्जी चलेगी, मेरे बच्चे मेरी मर्जी, सोचा कभी आपने इस बात के ऊपर कि किसकी मर्जी चलाते हैं? और सिर्फ जिस्म पे ही नहीं, हर चीज पे देख लें, मर्जी का ही तो मसला है। मैं जीना चाहती हूं अपनी मर्जी से, हर काम वो ही होना चाहिए जैसे मेरी मर्जी, जैसे मेरी खुशी, जैसे मेरा दिल, जैसे मैं सही समझती हूं, बस वो होना चाहिए। मर्जी मर्जी तो चल रही है सब तरफ, उनको हम क्या कहते हैं जो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सभी अपनी मर्जियों की जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो यहां पर अपनी मर्जी छोड़नी पड़ेगी, चाहे इस कीमत पर कि मेरा दिल कटे, मेरी ख्वाहिश टूटे, मेरे दिल टूटे, मैं दिल नहीं कर रहा, चाहे दिल नहीं कर रहा हो, लेकिन मर्जी यहां पे अपनी नहीं चलानी, अपनी मर्जी को तोड़ना पड़ेगा और अल्लाह की मर्जी पे आना पड़ेगा, चाहे दिल के खिलाफ चलना पड़े। दिल के खिलाफ चल पड़, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ नहीं चलना बस। अगर प्रॉब्लम यहीं पे तो आता है कि हमें दिल करता है कि मेरा सारा कुछ, जो मेरा दिल चाहता है ना, वो पूरा हो, जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसकी नहीं परवाह। हालांकि देख लें, सिर्फ कितनी देर मेहनत करनी पड़ेगी, 60 साल 70 साल करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या है, हमेशा का आराम। और एक वो बंदा है जिसने इस सिर्फ 60 70 साल की जिंदगी है, उसको सारी को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने, मेरी मर्जी पूरी हो जाए, मेरा दिल ना कभी टूट जाए, मैं ऐसी लगूं, मैं वैसी लगूं, मुझे कोई कुछ ना कह दे, मेरा बस मान ना टूटे, मेरी इज्जत ना कम हो, मेरे दोस्त ना मुझे कहीं छोड़ दे, मैं मेरी मर्जी जो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर इस 60 70 साल में अपनी मर्जियां कर ले, मगर जब वहां जाके नहीं चलनी फिर अपनी मर्जी, फिर वहां जाके अंजाम क्या होगा सोचे, वहां पे चूज नहीं कर सकेंगे, अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन है हम सबके लिए कि हम कहाँ पे अपनी मर्जी करना चाहते हैं। आप शीशे के सामने खड़ी होती हैं, क्या सोचती हैं, अल्लाह की मर्जी से मैंने बाहर निकलना है या अपनी मर्जी से? हर रोज हमने फैसले करने होते हैं। आप कमाने जा रही हैं, अपनी मर्जी का कमाना है या फिर अल्लाह की मर्जी का? आप कुछ खा रही हैं, किसकी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी का या अल्लाह की मर्जी का? तो ये जितना ज्यादा अल्लाह की मर्जी पे चलेंगे ना यहाँ पे, आखरत में उतना ही ज्यादा आपको अपनी मर्जी करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे जितना ज्यादा अल्लाह की मर्जी को तोड़ेंगे, आखरत में उतनी ही प्रॉब्लम में रहेंगे। सिंपल एज दैट, को बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला थोड़ी है जो किसी की समझ में ना आए। तो अगर हम ये चाहते हैं ना कि वहां पे मैं भी कुन कहा करूं और हो जाया करे, मैं कहूँ ये फल मुझे चाहिए तो उसी वक्त फल मेरे सामने आ जाए, मैं कहूँ मुझे ऐसा महल चाहिए तो वैसा हो जाए, मैं कहूँ मुझे ऐसी सूरत चाहिए तो वैसी हो जाए, मैं कहूँ मुझे ऐसे कपड़े चाहिए तो ऐसे हो जाए, अगर ये चाहते हैं ना, यहाँ पे अपनी मर्जियां तोड़ दें, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, और रब की मर्जी को अपना लें। कदालिक यज़िल्लाहुल मुत्तकीन, इस तरह अल्लाह ताला बदला देगा तकवा करने वालों को, तकवा वालों को जो डर डर के परहेजकारी की जिन्होंने जिंदगी गुजारी, इस तरह अल्लाह ताला उनको बदला देगा। अब रिवाइंड जरा करें, बैक बैकवर्ड जाएं, वहां पे क्या हो रहा था, ये यहाँ पे जो पहुंचे हैं ना, ये जो जन्नत के अंदर बैठ के और मजे कर रहे हैं ना, वो जब उनकी मौत आई थी तो कैसी थी, वो भी फर्क थी। मौत का उनका सीन अब दिखाया गया, अब ये भी अनसीन में से है, हमें हमारे सामने है, हमारा कोई प्यारा पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या रहा होता है, अल्लदीन तवफ्फाहुमुल मलाइका तो तय्यिबीना, वो लोग जिनको फौत करते हैं फरिश्ते, तय्यिबीना वो पाक साफ होते हैं, यानी तय्यिब सिर्फ जिस्मानी तौर पे पाक नहीं, उनके अमल भी पाकीजा, उनकी जिंदगी पाकीजा, उनका किरदार पाकीजा, उनका अखलाक पाकीजा, उनका अमल पाकीजा, उनका खाना पीना पाकीजा, समझ आई, उनकी जिंदगी पाकीजगी की किर्द घूमती है, तय्यिब पाक पाक जिंदगी गुजारना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप नहीं, कोई वाहियाती बेहयाई फहाशी की बातें नहीं, कोई शिर्क की गंदगी नहीं, कोई हराम की कमाइयां नहीं, कोई बातें गलाजत वाली नहीं, कोई गुफ्तगू के अंदर गालम गलोच और गइबतें और चुगलियां और बोहतान और इस तरह की चीजें नहीं। तय्यब, पाक, वो पाक है, उनकी हर चीज ही पाक है, पाकीजा लोग। देखिए एक वर्ड के अंदर ना पूरी जिंदगी सामने आ गई ना, कैसे लोग होते होंगे, मामलात में भी खरे, अखलाक में भी अच्छे, अकीदे के अंदर भी साफ सुथरे, खाने पीने में भी, रहने सहने में भी, सोच में भी पाकीजगी है उनकी सोच में। जिन चीजों को लोग नहीं देख रहे उनमें भी, उसमें सोच तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, उसमें भी पाकीजा है, खैर खैर है उनके अंदर। तो पूरी जिंदगी सामने आ गई ना तय्यबीन से, तय्यब लोग, जिस्मानी तौर पे भी तय्यब है और देखें हर लिहाज से तय्यब, एक पर्सनैलिटी है ये। अच्छा अब इसको फौत करने के लिए जब फरिश्ते आएंगे तो क्या होगा, यकूलून सलामुन अलैकुम, हेलो हाय नहीं करते वो आके, हाय हाउ आर यू, ये नहीं करते। तो बड़ा मॉडर्न लगता है ना, सलाम को छोड़ो ये तो पुरानी बातें होंगी, हाय करो, गुड मॉर्निंग करो। तो हम अपने इन मुसलमानों को भी हाय हेलो ही करते, इसको बड़ा मॉडर्न समझते हैं। तो लेकिन उनको फरिश्ते भी आके, इसका मतलब सलाम कितनी प्यारी चीज है, क्योंकि फरिश्ते भी सलाम करते हैं, उनकी ग्रीटिंग भी सलाम है, जन्नत में भी सलाम मिलेंगे, हर तरफ से सलाम अलैकुम, अल्लाह ताला भी सलाम करेगा। कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा कलमा है ये सलामती का पैगाम जो होता है, जो हमें ये तोहफा दिया गया है कि आप एक दूसरे को जब मिला करो तो आप भी यही कहा करो। तो ये छोटी बात थोड़ी है, तो वो फरिश्ते भी सलाम करते हैं। अपने बच्चों को ये बात बताइएगा, वो बड़े फैसिनेट होंगे इस बात से। तो यकूलू ना सलामुन अलैकुम, वो कहते हैं सलामती हो तुमको, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जब आपको कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो फिर कैसा लगता है, डर थोड़ी लगता है फिर उससे। फिर सलाम वालेकुम का मतलब तो यही है कि मैं सलामती का पैगाम लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम मेरे से सलामत हो, ठीक है, तुम पर सलामती हो। तो उसको सुन के ही सोचे ना कि कैसा लगता है, इंसान खुश हो जाता है ना, उसकी तबीयत खुश होती है। इसका मतलब है कि ये कोई बुरे इरादे से नहीं आया, इसका मतलब है कि कोई मतलब अच्छी बात है। उदखुलुल जन्नत है, दाखिल हो जाओ जन्नत में, बिमा कुंतुम तामलून, इस वजह से कि तुम जो अमल करते थे। तो अभी तो बात आ रही है कि तू फौत करने के लिए वो आए हैं, तो अभी जन्नत कहां से आ गई। देखिए यही बात कि यानी कब्र के अंदर उनके लिए जन्नत की तरफ की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत की हवाएं आने लगेंगी। अल्लाह अकबर, एक मतलब खिड़की से मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक सुराख होगा, वो वहां से दरवाजा, खिड़की कुछ जगहों पे दरवाजा लिखा, कुछ खिड़की, लेकिन हदीस में आता है ऐसे कि बस एक ओपनिंग होगी जिससे वो जन्नत की नेमतों का नजारा करेगा, खुश होगा, और अब उसको मोमिन को जन्नत में उसका घर भी दिखाया जाएगा। सुभान अल्लाह, उसकी कब्र भी इतनी खुली हो जाएगी, हदीस में आता 70 हाथ हद्दे निगाह तक फराह हो जाएगी। अल्लाह मजाल्ला मिन, अल्लाह मजाल्ला मिन, अल्लाह मजाल्ला मिन, और चौदवी के चांद जैसी उसमें रोशनी होगी उनकी, उसकी कब्र में, और जन्नत का खुशबूदार लिबास उसको पहनाया जाएगा, खुशबूदार आरामदेह नरम नाजुक बिस्तर उसके लिए मुहैया किया जाएगा, और उसके पास खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत खुशबूदार लिबास वाला कोई आएगा तो वो उसे पूछेगा तू कौन है, कहेगा मैं तेरा नेक अमल हूं, नेक अमल हूं, और आखिरत की जिंदगी में तुझे आराम और इनाम की बशारत देने आया हूं। तो वो कहेगा अल्लाह जल्दी से कयामत आ जाए, मैं जल्दी से अपने घर चला जाऊं, अल्लाह में शामिल फरमा, अल्लाह में शामिल फरमा। बस हदीस में आता है कि वो उस वक्त कहेगा कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ कि मैं उनको बता दूं कि मुझे कितना अच्छा अंजाम मेरा हो गया, मैं जाके उनको बताना चाहता, ये नहीं कह रहा कि मैं उनको मिस कर रहा हूँ और मैं उनमें जाना चाहता हूँ, ये नहीं कहेगा, कभी भी नहीं ये कहेगा, कहेगा मैं उनको बता गया हूँ, क्योंकि जब हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती ना अगर वो पीछे परेशान हो रहे होंगे तो मैं उनको जाके बताऊं कि मुझे तो बहुत अच्छी जगह मिल गई। अल्लाहु अकबर। और जिस वक्त हदीस में आता है कि जब उसके लिए मौत के फरिश्ते भी आते हैं ना, तो सूरज की तरह रोशन चेहरों वाले और इतने खूबसूरत फरिश्ते, ये जाहिर है इतने खूबसूरत लोगों को देख के वैसे इंसान खुश हो जाता है ना, अगर कोई हॉरिबल शक्ल वाली कोई आप किसी को भी देख लेते हैं तो कैसे इंसान परेशान हो जाता है। खूबसूरत चेहरे आके, और हदीस में भी आता है कि वो आके सलाम करते हैं, और वो जो मलकल मौत होते हैं ना उसके कान के पास आके कहते हैं कि ए पाक रूह, ए तय्यब रूह, कि तय्यबीन है ना ये पाक है, तो उस वो भी उनको कहते हैं कि पाक रूह खुश हो जा, तेरे रब की रहमतें हैं, जन्नत की नेमतें हैं तेरे लिए। तो जब उसको ये इतनी बड़ी खुशी मिलती है, आखिर क्यों ना वो खुश हो, वो रूह क्यों ना खुश हो जो दुनिया में सारा वक्त इस चीज के लिए मेहनत करती रही है, इसके लिए स्ट्राइव करती रही है, उसकी सारी एफर्ट ही ये होती थी कि मेरा अल्लाह मेरे से खुश हो जाए, मेरे से राजी हो जाए, वो ये खुशखबरी सुन ले, उसको और क्या चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी रूह इस तरह निकलती है जैसे मश्क होती है ना, ये लेदर बैग होता है, उसका मुंह खोल दे आपने, बिल्कुल ओपन कर दे उसका मुंह, तो पानी कैसे उसमें से निकलेगा, इतना बह के निकलता है ना। तो इस तरह उसकी रूह कहती है कि मुझे और क्या चाहिए, और फिर किसने यहाँ पे रहना जिसको ये बशारत मिल जाए, तेरा रब तेरे से खुश है, जन्नत की नेमतें तेरे लिए, वो क्यों ना जाना चाहेगा। तो ये वही है ना जिसने देखे दुनिया के अंदर अपनी मर्जियां नहीं चलाई, बुझते नहीं कितनी इसने अपनी ख्वाहिशात को मारा कि नहीं मेरे अल्लाह की जिसमें खुशी है बस वही करना, मैं जैसी लगूं, मैं जैसी मर्जी लोग मुझे समझें, जो मर्जी मुझे कह दें, जैसे मर्जी मुझसे बायकॉट करें, मुझे नहीं परवाह, मेरे अल्लाह की मर्जी चलेगी। आप बताएं उस बंदे के लिए दुनिया तो जाहिर है कैद खाना ही है, उसने थोड़ी दुनिया को अपनी जन्नत बनाया, उसके लिए तो ये कैद खाना है। पता नहीं कितनी बातें उसको सुननी पड़ती हो, कितने लोगों के उसको ताने बर्दाश्त करने पड़ते हो। तो जिसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से गुजारी है, फिर देखो जब उस जिसकी मर्जी के लिए हमेशा कोशिश की, जब उसकी मर्जी मिल गई, तो इसका तो गोल ही यही था लाइफ का, इसकी जिंदगी की तो ख्वाहिश ही ये थी, ये तो हर काम ही ये सोच सोच के करता था कि मेरे रब की मर्जी पूरी हो जाए, मेरी मर्जी क्या चीज है। वो देखो फिर अल्लाह ताला उसके लिए क्या करता है। तो वो फिर उसकी रूह ऐसे निकलती है, और वो फौरन फौरन उसको जल्दी से पकड़ लेते हैं, उसकी रूह को ना ये फरिश्ते जल्दी से पकड़ लेते और उसको लपेट देते हैं ऐसे कफन में जो जन्नत से लाए हैं। उस कफन में इतनी खूबसूरत परफ्यूम है, इतनी खूबसूरत खुशबू है, और वो फिर लेके उसको ऊपर चढ़ रहे हैं, रास्ते में फरिश्ते कह रहे हैं कौन है कौन है, कितनी खूबसूरत इसकी खुशबू है, कहते हैं ये फलां है, और आसमान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो आसमान के फरिश्ते भी पूछते हैं ये कौन पाक रूह है। हमें बस दुनिया में अपने नामों की बड़ी पड़ी होती है कि हमारे नाम यहाँ पे अच्छे हो जाए, ये नहीं परवाह कि फरिश्ते हमारे पता नहीं क्या नाम लेंगे वहां पे कि ये कैसी रूह है, ये कौन है, वो भी पूछते हैं कि कैसी तैयब रूह है, कहते हैं ये फलां बिन फना है, आसमान के फरिश्ते उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं, उसको वेलकम करते हैं और कहते हैं हम तुम्हें पाक रूह, तुझे बशारत और अल्लाह की रहमतों की नेमतों की। फिर वो उसको लेके ऊपर चढ़ते हैं दूसरे आसमान तीसरे आसमान, उसकी कितनी इज्जत है, सुभान अल्लाह। जब आसमाने अव्वल के फरिश्ते मोमिन की ऐसी इज्जत अफजाई के लिए दूसरे आसमान तक उसको अलविदा कहने के लिए साथ जाते हैं, दूसरे आसमान वाले फिर उसकी रूह को अगले आसमान तक लेकर जाते हैं, यानी पहले तो उसको वेलकम करते हैं ना, फिर उसको उदाफिज या मतलब उसको अलविदा कहने के लिए भी अगले आसमान तक, फिर तीसरे वाले, फिर चौथे वाले, इस तरह सातवें आसमान तक रूह पहुंच जाती। और वहां पहुंचने के बाद अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस मेरे बंदे का नाम इलियीन में लिख लो, तो फिर उसको वहां लिख लिया जाता है और इसकी रूह को फिर जिस्म में सवाल जवाब के लिए लौटाया जाता है। अल्लाह हु अकबर, फिर इसके सवाल जवाब भी फिर अल्लाह ताला आसान कर देता है ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इंसान को अल्लाह ताला फिर साबित कदमी अता फरमाता है, वहां पे भी कब्र में भी साबित कदमी देता है, अल्लाह ताला की तरफ से साबित कदम रह सकता है इंसान, खुद नहीं रह सकता। तो इसलिए दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमारा ईमान ऐसा कर देना, और अल्लाह ताला हमें वो जिंदगी अता फरमाना जो तय्यबीन वाली, और ऐ अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन वाला अंजाम अता फरमाना, जैसा उनका अंजाम होता है। और आप सूरह इब्राहिम में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला कौले साबित से उनकी मदद फरमाता है, जो दुनिया के अंदर इस कौल के ऊपर जमे रहे अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। वहां पे भी कब्र में भी, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि कब्र में भी वो फिर जब मुनकर नहीं सवाल जवाब करते हैं तो उनके सवालों के जवाब में भी वो साबित कदम रहता है अल्लाह ताला, क्योंकि उसको सुझा देता है वहां पे। सुभान अल्लाह।